Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. Om Shanti कहते ही एहसास हो जाता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं. लेकिन क्या अब हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम इसे अनुभव कर पाएं? क्योंकि अनुभव से बड़ी और कोई कसौटी नहीं होती. जितनी भी शिक्षा हमने ली है, जो भी ज्ञान हमें मिला है, वो जीवन को एक सुंदर जीवन की तरफ बदलने का प्रयास है जो इस पूरी श्रृंखला में हम करते आ रहे हैं. और इसीलिए ना सिर्फ हर रोज के ज्ञान की बातें, बल्कि परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई वो मुरली, वो श्रीमत जिस पर चलकर अगर हम हर रोज उस मुरली को सुन पाते हैं, उसका सार ले पाते हैं, तो रोज का हमें एक सूत्र मिल जाता है जिसे हम जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. और फिर अपना जो पुराना बिलीफ सिस्टम चल रहा है, जितने स्ट्रांग संस्कार हो चुके हैं, उन्हें धीरे धीरे मिटाते हुए हम अपने प्योर जो संस्कार हैं, जो ओरिजिनल संस्कार हैं, उन्हें इमर्ज कर सकते हैं. आज फिर मुरली की तरफ चलते हैं. हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर, हमारे साथ हैं शीलू बहन जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. ओम शांति.
ओम शांति.
शीलू बहन, अगर हम देखें अभी तक जो हम मुरली की बात करते आ रहे हैं, बाबा की बातें जो होती हैं वो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो अभी तक हम जिन चीजों को मानते आ रहे थे, उनसे बहुत ऐसा लगता है कि अलग हो जाता है. क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस शरीर को या जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसे ही सच माना था. लेकिन जहां हमारा वो पूरा थॉट प्रोसेस शिफ्ट हुआ, जहां हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई, तो ये सारा जो ज्ञान है वो हमें बिल्कुल क्लैरिटी देता जाता है कि हमें ना सिर्फ लौकिक संसार को कैसे देखना है, ना सिर्फ अपने आसपास के लोगों को कैसे देखना है, खुद को भी कैसे देखना है. तो मुरली शुरू करने से पहले एक बार फिर हम अपने, कुछ हो सकता है कुछ दर्शक ऐसे हों जो नए जुड़ रहे हों, अपनी पहचान और परमात्मा की पहचान, प्रकृति की, समय की पहचान ले लेते हैं आपसे.
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है कि हर कार्य में, हर प्रसंग में, हर घटना में हम पहले ये सोचें कि ये करने वाली शक्ति कौन कर रही है, और वो मैं आत्मा हूं, ये हम भूले नहीं. और दूसरा, जब भी किसी को देखें तो उसे भी उस आत्मिक भाव से ही देखें. ये आत्मा भी मेरा भाई है, उस हिसाब से देखें. तो भाई भाई की दृष्टि अपनाते हुए हम उसे देखें, और भाई भाई हैं तो एक पिता की संतान है, ये सोचकर देखें. और हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये भी अवश्य हमारी बुद्धि में हो. तो हम इस संसार को एक खेल देख रहे, एक नाटक देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ये दृश्य पास हो रहे हैं, जो कुछ होता है वो तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, लेकिन हम उसको बहुत सोचते ही रहते हैं तो हम उसी में फंस जाते हैं. तो पास हुआ, चला गया, फिर दूसरा दृश्य आया, हमने भी उसको भुला दिया, दूसरे दृश्य के सामने आए, वो भुलाते गए. और आज की जो मुरली हम आपको सुनाएंगे बाबा की, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि कैसे दुआएं दो, क्षमा करो, भूल जाओ, ये सब बहुत सुंदर बातें, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे. जैसे कोई यात्रा पर जा रहे हैं, सामने कई सीन्स आती है, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, वो दृश्य पास होते जाते, हम उसमें फंस नहीं जाते, वहां खड़े नहीं हो जाते, वो पास होते गए, हम आगे बढ़ते गए. ऐसे संसार में भी हम आगे बढ़ते गए, वो घटनाएं पीछे जाती गई. और ऐसे सोचेंगे तब हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे.
बिल्कुल. और क्योंकि अभी तक भी हम ये बातें सुनते आते थे, शीलबहन, अगर हम कहें कि सबको माफ कर देना चाहिए, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, गलती को आगे बढ़ो, अपने साथ लेकर मत चलो. लेकिन वो जब लोगों के क्वेश्चंस ये होते थे कि मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे साथ गलत हुआ हुआ है, वो मुझे बार बार जो कौंधती रहती है बात, मेरे जीवन में वो एक बहुत बड़ा घाव बन गया है, वो रिश्ता रहता है क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ हुआ है. तो जहां ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि मैं जो अभी तक अपने आप को सोच रहा था कि मैं यही शरीर हूं, यही मेरा सारा कुछ है, तब तक तो वो घाव घाव रहा, वो तब तक तो वो चोट जो है वो चोट रही. लेकिन जहां मैं अपने आत्मिक स्वरूप में आ गया, जहां मैंने ये जान लिया कि मैं तो कितनी सदियों से हूं और आगे भी रहूंगा, और मैं एक अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बीइंग हूं, जो पॉइंट ऑफ लाइट भी हूं, लेकिन वो परमात्मा का एक अंश हूं, परमात्मा का एक बच्चा हूं, और अंश मतलब उनके सारे जो गुणों का जो अंश मुझ में है. तो वो एहसास जब हो जाता है, तब आई थिंक वो जो माफ करने वाला प्रोसेस है या भूल जाने वाला प्रोसेस है, वो आसान हो सकता है.
तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य, आज की मुरली का सार है, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। शिक्षा तो देनी ही है, नहीं तो वो समझेगा कैसे। तो शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। अभी हम कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम, लेकिन अभी वो स्थिति है कि गृहस्थ अलग हो गया, आश्रम अलग हो गया, पर गृहस्थ ही आश्रम बन जाए वो तब होगा जब उसमें रहने वाले इतने ऊंच विचारों वाले होंगे। तो अब हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, आप लक्की बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अब बाबा के सामने हम बच्चे बैठे हैं और बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं और बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना, बाबा पूछ रहे हैं। परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। अब ये भी एक बहुत ऊंची बात है, भगवान का प्यार हमें इस समय मिल रहा है, ये हमारे बहुत ऊंचे भाग्य की निशानी है। लेकिन इस प्यार का परिणाम अनेक जन्म उस अनुभूति में हम रहते ही हैं।
बिल्कुल, वो जो आगे की वक्त आने वाला है।
हाँ, जो दो युग तक उस प्रेम की अनुभूति में रहते ही हैं, आत्मा इतनी भरपूर रहती है कि किसी और प्यार की उसको आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वो वहाँ प्यार नेचुरल रूप में है, कोई मांगने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है, यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सत्युग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। एक होता है जैसे किसी को आशीर्वाद दे दो, कोई वरदान दे दिया, पर ये वर्षे के रूप में यानी अधिकार के रूप में हमें भगवान द्वारा इस समय प्राप्त होता है।
इनफैक्ट अगर हम देखें भी शिलु बहन, तो ये जो युग है वो वैसा है युग कि जब बहुत भूख लगी हो तब अगर हमें खाना मिलता है तो हमें उसका मजा अलग ही होता है, लेकिन जब हम रोज का खाना खा ही रहे हैं तब वक्त पर खाना आ जाता है, ठीक है हम खा लेते हैं उसको। तो आज वो वक्त ये है अगर हम संगम युग को देखते हैं, जब हम चारों तरफ से अतृप्त हैं, हम वो रोते बिलखते लोग हैं, तो जब हम ढूंढ ही रहे हैं, ऐसे में परमात्मा का प्यार जो है वो जो हमें भर रहा है, तो इससे बड़ा भाग्यवान भाग्यशाली जो
और कोई नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में, आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाबा के पास भाग्य लेने के लिए हम पहुंच गए हैं। बाबा बच्चों को एक बहुत सहज विधि सुनाते हैं भाग्य पाने की।
इनफैक्ट यहाँ एक और मुझे बात याद आती है, जब बहुत बार हम परेशान होते हैं हम ये कहते हैं जब भगवान भाग्य लिख रहा था मैं कहाँ थी। बहुत बार हम जब आपस में परेशान हो रहे होते हैं हम कहते हैं पता नहीं मेरा भाग्य कैसा लिख के दिया है उन्होंने। तो आज हमारे सामने ये क्लियर आ गई है बात कि परमात्मा भाग्य लिख रहे हैं
जी।
अब अगर हम सहज विधि से,
एक कहानी भी याद आती है कि भगवान ने ऐलान किया कि मैं भाग्य बांट रहा हूँ, हर एक अपना अपना पात्र लेकर के आए, तो कोई छोटा बर्तन ले गए, कोई बड़ा बर्तन ले गए, कोई बहुत बड़ा बर्तन ले गए, लेकिन कुछ लोग छलनी भी ले गए, उनको कुछ मिला ही नहीं तो एक छलनी ले गए। तो जो बड़ा बर्तन ले गए तो उनको ज्यादा भाग्य मिल गया, वो भगवान तो बराबर बांट रहा था पर लेने वालों के ऊपर था, और जिन्होंने छलनी ली उनका तो भाग्य ही बह गया। किनका छोटा थोड़ा मिला क्योंकि बर्तन ही ऐसा ले गए थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो बुद्धि है ना वो है तुम्हारा बर्तन। इस बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बर्तन बनाओ और इतना विशाल बनाओ तो देखो भाग्य उसमें अनगिनत विशाल बेहद हो जाएगा। पर कई बच्चे छलनी ले जाते, छलनी में तो छेद होते हैं, छेद क्या करेंगे, वो चीज को बहा देंगे। तो भाग्य भी उनका भेज जाता है। कैसे छलनी का मतलब क्या है, प्रश्न, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है, तो प्रश्न ही प्रश्न, डाउट ही डाउट है, अनुमान ही वहम शक, तो ये छलनी
ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी ट्रू, हाउ इज दैट पॉसिबल, गॉड हैज कम, आई डोंट बिलीव दैट, यू नो लॉट ऑफ पीपल से लाइक दिस, कि भगवान कहां से आ सकते हैं, अभी तो उनका अवतार होना है, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, बहुत सारे ऐसे सवाल जो है
बिल्कुल, या फिर कहेंगे मैं तो भाग्यवान हो ही नहीं सकता, ये भी समझ लेते हैं,
मुझे तो किस्मत में ही नहीं,
मेरी तो किस्मत में नहीं, मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मेरे भाग्य में कोई अच्छा लिखा ही नहीं हुआ है, खुद ही निश्चित कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं कि मेरे भाग्य में अच्छा लिखा ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं।
तो चलिए, बहुत सुंदर बात आज हमारे सामने आ रही है, और ये एक्चुअली वन थॉट कैन चेंज द होल प्रोसेस,
बिल्कुल
हमारी जिंदगी का पूरा एक थॉट भी जो है ना वो कर सकता है, तो जो हम बार बार ये कहते हैं कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो मैं कहां थी या मैं कहां था, तो आज हम आपको आमंत्रित करते हैं, परमात्मा खुद बता रहे हैं कि कौन सी सहज विधि।
जी, बाबा बच्चों को एक बहुत सहज विधि सुनाते हैं भाग्य पाने की, सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात करनी है, वो कौन सी बात, जो सबसे सहज से सहज है, अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले, आपको जो भी मिले, चाहे छोटा मिले, बड़ा मिले, जवान मिले, बूढ़ा मिले, कोई भी मिले, उसे दुआएं दो और उससे दुआएं लो, उसे दुआएं दो उससे दुआएं लो, चाहे क्रोधी भी आए, अब बताओ कई बार होता है क्रोधी, क्या क्रोधी को कैसे दुआएं दे, पर क्रोधी भी आए लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और उनसे दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। इसकी दुआएं जैसे साइंस में, बाबा ने बहुत मिसाल दिया सुंदर, साइंस में रॉकेट होता है ना, रॉकेट तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, कितना जल्दी उड़ता है वो, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का।
श्री बहन, एक यहाँ पे मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को जब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है या मेरे साथ अच्छा नहीं हो पा रहा, मैं नहीं चाहता हूँ मैं कि मैं दुआएं दूं, जैसे कि बात कही जाती है, या मैं अच्छा सोचूं, मैं नहीं दे पा रहा, तो क्या मैं झूठ दे दूं, तो क्या वो थोड़ी देर तक अगर जबरदस्ती ब्लेसिंग्स दे भी दे दें तो क्या फाइनली वो ठीक हो पाएगा?
जबरदस्ती तो दी नहीं जाती, ये तो अंदर से अपने आप निकलती है।
बट थिंक पॉजिटिव, यू नो, इवन इफ अभी अंदर से अपना भी हर्ट है जो रहता ही है, रह जाता है हर्ट, लेकिन उसके बावजूद कई बार क्या होता है कि हम अपने पिता की बात मान के, चाहे हमें अंदर से हर्ट है, हम वो करना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो भी हेल्प करेगा और ग्रेजुअली वो कन्वर्ट हो जाएगा?
कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं बहन जी हमें दुआ करो, दुआ दो, तो दुआ मांगने से नहीं मिलती है, और जबरदस्ती भी दुआ नहीं दी जा सकती है। हम कहते हैं जबरदस्ती, चलो मुझे उसके उसको दुआएं देनी, अंदर में हर्ट है हूँ, मुझे अंदर में गुस्सा है, मुझे अंदर में बड़ा दुख है, और मैं उसको दुआ दे रही हूँ, तो भी दुआ नहीं होती है, वो भी केवल हम अपने आप को खुश कर लेते हैं कि चलो हमने दुआ दी, दुआ देने के लिए तो बड़ा दिल चाहिए।
नहीं, पर वो क्या प्रोसेस, अगर ऊपर से मैं शुरू तो कर दूं, कम से कम अपने बाप दादा की, पिता की बात मान के मैं करना तो शुरू करूं, उसके बाद धीरे धीरे क्या वो अपने आप सहज हो पाएगा, ये मैं जानना चाहती हूं।
हाँ, हो पाएगा सहज, कम से कम हमने ये मन में संकल्प तो किया कि मुझे दुआ देनी है, शुरुआत है, पर वो फिर भी दुआ है नहीं, कि चलो फिर भी अच्छा विचार है, वो आपको खुश करेगा, पर उस तक वो दुआ पहुंचेगी नहीं जब तक आप सचमुच बड़े दिल से उसको दुआ नहीं करते, उसको भुला नहीं देते, क्षमा नहीं कर देते, तब तक वो दुआ महसूस नहीं होगी, उसको नहीं फील होगी,
तो पुरुषार्थ
उसको भी
तो
लगेगा, उसको भी लगेगा ये तो ऊपर ऊपर से कर रहा है, पता चलेगा तो केवल ऐसे ही कह रहा है, पर सच्चे दिल से होता है ना, तो उसमें सोचना भी नहीं पड़ता है, वो अनायास निकल आता है, ये नहीं कि मुझे देना है, ये भी नहीं सोच चलता है, अनायास अपने आप सहज रूप से निकल आता है। तो ये क्या है, ये भी एक अभ्यास डालना पड़ेगा, संस्कार बनाना पड़ेगा कि मुझे दुआ देनी है।
डेफिनेटली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो अभी तक संस्कार है कि मुझे हर्ट हुआ तो मैं एंगर में ही रहूंगा, मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैं एंगर उसी में ही रहूंगा, उसी स्टेज में रहूंगा। लेकिन ये एक प्रयास, क्योंकि जैसे हम बच्चों के साथ भी करते हैं श्रीमान, अगर हम देखें कि बच्चे ने कभी किसी के साथ कोई लड़ाई कर ली तो हम उसको कहते हैं कि चलो प्यार कर दो, तो उस वक्त बच्चा कहता है प्यार तो नहीं आया होता उसके मन में क्योंकि गुस्सा तो है ही उसके साथ, लेकिन चलो मम्मी की बात मान के वो प्यार कर देता है। फिर 5 मिनट बाद ही हम देखते हैं कि वो फिर प्यार से ही बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही हम एक प्रयास तो करें कि अंदर से चलो अभी भी ये गुस्सा, क्योंकि वो गुस्सा गुस्सा बहुत देर तक ना रह के हम बाबा की बात मान के एक पॉजिटिविटी लेकर आए, फिर धीरे धीरे शायद वो नेगेटिविटी बार बार ना रहे।
लक्ष्य जरूर रखें, शुरुआत करें, पुरुषार्थ करें, फिर धीरे धीरे वो नेचुरल बन जाएगा, ये बाबा जरूर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से जो भी मिले उनको दुआएं दो और उनसे दुआएं लो। तो ये जैसे रॉकेट की तरह काम करेगा, ये बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। पहले बाबा से दुआएं लो। अब ये कि दूसरों को दुआएं तब दे सकेंगे जब पहले आपको दुआएं मिली हुई होगी।
और हमने ना एक बार मुरली में अमृत वेले की इम्पोर्टेंस पे भी बात की थी
जी, जी।
मुरली में एक बार बाबा ने ये बताया था कि अमृत वेला जो है वो ऑलरेडी उसे वो मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है
जी।
कि जब आप अमृत वेला बाबा के साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ वर्षे में मिल ही जाएगा।
हाँ, तो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बने, अमृत वेला उठे, बाबा को याद कर रहे हैं, उनसे सर्व संबंध जोड़ रहे हैं, तो बाबा की दुआएं अपने आप मिलती है। और जो दुआएं सुबह बाबा की मिली अमृत वेले वो फिर सबको बांटो, क्योंकि खुशी की खुराक हमने खा ली है सुबह सुबह, तो वो बांटो सबको।
और वो यही एक चीज है जो बांटने से ज्यादा होती है,
ज्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं फिर दुआएं दो और दुआएं लो, ये कर सकते हो। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कोई बद्दुआ दे फिर क्या करोगे, आपको बार बार तंग करे तो देखो आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता हो, परमात्मा को तो दाता ही कहते हैं, है कहते ना कि दे दाता के नाम, कई मांगते दे दाता के नाम, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो दाता के नाम पर कुछ करते हैं तो वो तो दाता तो लाख गुना देता है, वो लेता थोड़ी है, देने वाला थकता नहीं है, लेने वाले थक सकते हैं। तो भगवान दाता बन करके देता है। तो बाबा कहते हैं तो मास्टर दाता हो ना, तो दाता का काम क्या होता है, देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन है तो आपका भाई, है तो आपकी बहन, परमात्मा के बच्चे तो भाई हो बहन हो, तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, ये समझो। तो उसको क्या देंगे, बद्दुआ देंगे क्या?
नहीं दे सकते।
बाप कभी बद्दुआ देते हैं क्या? देखो भगवान को हम कितनी गालियां देते हैं, हे भगवान तुम निर्दयी हो, तुम कठोर हो, तुम बहरे हो, न जाने क्या क्या हम भगवान को कहते हैं।
किस सिचुएशन में लाकर रख दिया आपने, मेरे साथ क्या किया भगवान, तुमसे तुम्हें भी नहीं मानता मैं।
तो इसीलिए भगवान को हम कितनी बद्दुआएं भी देते हैं लेकिन भगवान क्या करता है। तो बाबा कहते हैं बाबा कभी बद्दुआ देता है क्या? नहीं, बाबा तो बहुत खुश रहते हैं। तो इसीलिए कोई आपको बद्दुआ दे, बद्दुआ वाले को भी आप दुआ दे, वो दे न दे लेकिन आप दुआ लेंगे। अब कई बार होता है वो देता नहीं है दुआ पर आप दुआ लेते हो, कैसे आप दुआ लेंगे, वो दुआ नहीं कर रहा है पर आप उनसे कैसे दुआ ले रहे हो, क्योंकि आप वो दुख नहीं ले रहे हो। अगर उसका दुख हम लेते हैं तो जैसे बद्दुआ ली उनकी, पर हम उसकी उसका वो दुख नहीं लेते हैं तो हम बद्दुआ लेते
हम
हैं।
हम अपने आप को एक वो कैनोपी, एक शील्ड कर लेते हैं
जी,
जो बाबा का हम जो अमृत वेला में कितनी बार हम अपने आप को प्रोटेक्टिव शील्ड में भी ले लेते हैं
जी। तो बाबा आप बच्चों को एक वरदान देते हैं, अब भगवान हमको वरदान देते हैं। तो बाबा कहते हैं वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। अभी क्या वरदान देते हैं, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख नहीं लेना। वो दे लेकिन आप नहीं लेना। हम कैसे लेते हैं दुख, पता है?
क्योंकि हम अपने ऊपर उसको ले लेते हैं ना।
कैसे लेते हैं?
लेते इन द सेंस कि क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि वो हमारी इसी हमारा जो जिस जीवन में हम रह रहे हैं उसी के साथ
नहीं,
जो
नहीं,
है
नहीं।
वो जोड़ रहा है।
वो उसने समझो कुछ बुरा कहा मुझे तो मुझे दुख लगा, पर कैसे दुख लेते हैं? प्रश्न करते हैं, इसने क्यों मुझे ऐसे कहा, ये क्या समझता है? फिर आएगा, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, आखिर ये समझता क्या है? फिर मैं कम नहीं हूं,
मुझसे क्यों कहा उसने ऐसे, मुझसे क्यों
हाँ,
कहा, क्यों कहा,
क्यों
क्यों?
क्यों क्या कौन कहां कैसे, ये प्रश्न पूछ लेते हैं तो इससे दुख पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं दुख ले लेते हैं, तो आप ये दुख लो ही नहीं, प्रश्न करो ही नहीं। देखो आप पिक्चर देखने जाते हो, कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, आप कैसे देखते हो? साक्षी दृष्टा होकर
उसको अपने साथ नहीं जोड़ लेते अपनी जिंदगी के साथ।
हाँ, कोई रो रहा है तो आप भी रोते रहेंगे, कोई हंस रहा है तो जोर जोर से हंसते रहेंगे, ठीक है हंसते हैं क्योंकि एक एंटरटेनिंग चीज है, लेकिन हम कोई वो एक्टिंग थोड़ी करने लग पड़ते जैसे वो एक्टिंग कर रहा करके हंसा रहा, हम साक्षी दृष्टा होके देखते हैं। तो बाबा कहते देने वाले ने दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना, देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वो बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो वो तो बुरी चीज हुई ना। आपको दुख पसंद है, समझो कोई चीज आपको कोई देता है आपको पसंद नहीं है तो लेंगे क्या?
नहीं लेते।
हाँ, तो फिर दुख आपको पसंद नहीं है तो क्यों लेते हो? सिंपल सी बात है। हाँ, तो आपको दुख पसंद है, नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज हो गई ना, तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज दे तो आप ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, तो फिर दुख क्यों लेते हो? ले तो लेते हो ना, क्योंकि बच्चे हंसते हैं तो बाबा कहते ले तो लेते हो दुख, इसका मतलब है कि बुरी चीज ले ली। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है?
हम ही होते हैं,
हम ही होते हैं।
इनफैक्ट दिस इज वेरी ट्रू, स्थूल में अगर हमें कोई गलत चीज देता है, कोई बुरी चीज दे रहा है, हम नहीं लेते हैं उसे, वी से नो, वी डोंट वांट इट। लेकिन जो सूक्ष्म में ये जो थॉट्स में या वो चीजें हैं वो हम अनजाने में ही लेते जाते हैं और हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि हम रिफ्यूज कर पाए।
जी
एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो शिलुबेन यही है कि हमें कोई खराब चाय पिला रहा है या खराब कुछ खाने को दे रहा है, हम विल से नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं लेना, हम अपना ये राइट मानते हैं कि हाँ हम हाँ या ना कर सकते हैं
जी।
लेकिन जो ये विचारों में जो हमें मिलता है, हम सोच ही नहीं पाते कि हमारे पास क्षमता है कि हम उसे रिफ्यूज कर पाए,
क्योंकि हर्ट फील करते ना, एंड व्हाई वी फील हर्ट, ईगो हर्ट होता है
क्योंकि हमने ये मान लिया हाँ, कि ये ही हम है।
हाँ, तो ईगो हर्ट होता है ना, इसीलिए हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ ईगो की बात नहीं है, वहाँ हम हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए हम कहेंगे हम ये नहीं,
नहीं हमने नहीं लेना। नहीं, हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे पास वो राइट है। आज गॉड गिव्स अस द राइट कि हम, क्योंकि अभी तक ज्यादातर ये होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास एक क्षमता है कि मैं ये दुख ना लूं।
हाँ,
ये तो लेना ही पड़ेगा भैया, वो दे रहा है तो क्या मेरे पास ये है क्षमता कि मैं ना लूं? But today God clears it that yes. I have the capacity to say no.
बिल्कुल,
I don't
बिल्कुल
want it.
देखो एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं, दो बहनें आपस में ना टोक झोक हो रही थी, तो जो बड़े थे समझो क्लास में टीचर के सामने, तो अब टीचर देख रही है परंतु टीचर ने कुछ नहीं कहा, तो फिर एक स्टूडेंट टीचर के पास गई और ऐसा मुंह बना करके टीचर को कंप्लेन करने लगी कि जैसे कि अभी ही वो दुख इतना ले चुकी है। तो टीचर ने उसको कहा कि अच्छा उसने ये किया, पर जब तुम तो मुझे इस कंप्लेन सुना रही हो तो अभी क्यों ऐसी शक्ल
हाँ,
बना रही
हो? जिए जा रही हो उसको,
जैसे कि मैंने ही किया हो आपके सामने, मैंने तो नहीं किया ना। तो आप मुझे अगर किसकी कंप्लेन सुना रही हो तो आप तो अभी साक्षी होकर के सुनाओ ना, अभी तो वो बहन सामने नहीं,
नहीं
है।
वो तो हम जीते जाते हैं उस चीज में, तो बिल्कुल विक्टिम बनते जाते हैं फिर
तो उस हम किसी को कंप्लेन भी सुनाएंगे तो साक्षी होकर नहीं सुना पाते हैं। वो स्थिति में स्थित होकर के वो दुख वो कष्ट जैसे अभी मुझे इतना हो रहा है जो मैं उनको शेयर कर रही हूँ और उनको उस रूप से कंप्लेन कर रही हूँ।
इनफैक्ट इट एम्पावर्स अस, यू नो, इफ वी हैव द कैपेबिलिटी टू से नो, इट इज एक्चुअली एन एम्पावरिंग फैक्टर। हमें वो सशक्त करने का एक शक्ति हो जाती है हमारे पास, कि हम मना अपने आप को रिफ्यूज कर पाते हैं कि हम ये दुख लेंगे ही नहीं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बाबा कहते हैं अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है, आप होते हो या वो होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अब उसने तो कह करके पूरा कर दिया,
दे दिया उसने।
लेकिन हम दुखी होते हैं। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो ही गया, लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख की बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेगी ना। अब किसने मानो गलती की, अच्छा पर हम इस गलती को नहीं देखते, फिर भी हम उसको मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो मानो हमने उसको सुख दिया, तो वो जो चलो बद्दुआ भी उसने दी हमने ली नहीं और उसको मदद की सहयोग दी, तो ऑटोमेटिकली वो बद्दुआ तो पूरी हो गई, तो फिर वो सुख ही देंगे ना, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, दुआएं दो भी या दुआएं लो भी, बद्दुआ लो ही नहीं, भले वो बद्दुआ दे पर आप उसमें दुआ लो। कैसे दुआ लेंगे, बद्दुआ देने वाले से भी दुआ कैसे लेंगे, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। हम एक बहुत अच्छी बात सुनाते, कहावत है कि किसी ने कहा गॉड टेक केयर ऑफ माय फ्रेंड्स आई विल टेक केयर ऑफ माय एनिमीज, सुनिए ना ये कहावत। ये भगवान कई कहते हैं मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना सामने से आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे, आप बहुत अच्छे हो ये हो, पर आपके पीठ के पीछे क्या बोलेंगे तो आपको पता ही नहीं।
हाँ।
इसीलिए दोस्तों से मुझे बचाओ, दुश्मन मेरे सामने क्या बोल रहा है वो तो मैं जानता,
वो मेरे सामने सामने है तो हाँ, उसका सामना,
इसलिए उसके साथ कैसे व्यवहार करना है वो मुझे करना है वो मैं जानता हूँ, पर दोस्त ज्यादा खतरनाक होते हैं। पर तो चलो दुश्मन भी है और वो मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे बदलने के लिए कह रहा है, ये तो अच्छी बात है, ये तो और ही दुआ दे रहा है, तो मैं उसको भी दुआ के रूप में परिवर्तित करूं। तो बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, समझो कोई ऐसा कोई गलत काम कर रहा है, हम क्या कोशिश करते कि हम उसको शिक्षा दें, मैं उसको ठीक कर दूं,
हाँ कि ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए।
हाँ लेकिन बाबा कहते हैं, अभी आगे आपको बताएंगे अगली कड़ी में बाबा की बताएंगे कि शिक्षा देनी है पर कैसे देनी है, उसको शिक्षा भी देनी है दुआ भी देनी है समझाना भी है, उसका तरीका अलग है, वो बाबा ने बताया है।
लेकिन आज चीरो बहन आपने बहुत ही सुंदर आज हमने मुरली ली है कि किस तरह से बाबा ने भाग्य बांटने की बात की है कि वो वक्त आ गया है कि सत्युग में जाके स्वर्ग में बाबा भाग्य नहीं बांटेंगे, भाग्य जो है वो संगम युग में ही बढ़ता है, तो अभी वो वक्त है जब भाग्य बांटा जा रहा है। तो अभी हम सब जो दर्शक कई बार सोचते हैं कि भाग्य जब बांट रहे थे बाबा तब मैं कहां था, तो आज आपको आमंत्रण दे रहे हैं बाबा खुद ही परमपिता परमात्मा कि भाग्य बांट रहा है, आप ले सकते हैं भाग्य। और भाग्य प्राप्त करने का सबसे सहज जो तरीका बताया उन्होंने वो यही कि अमृत वेला के समय, जो अमृत वेला को वैसे ही वरदान का समय कहा गया है कि उसे वरदान मिला ही हुआ है कि जो हम मांग चाहते हैं अपने पिता से ले सकते हैं उस वक्त, तो वहां से जो दुआएं हमने ली हूं अपने परमपिता परमात्मा से वो पूरा दिन में हम देते जाएं, जितने भी लोग जो भी हमें मिलता जाए हम उन्हें दुआएं देते जाएं तो और दुआएं लेते जाएं। यहां एक और बहुत बड़ी बात शीलू बहन आज क्लियर हुई कि दुख जो है वो हमें कोई देता नहीं है, हम खुद ही लेते हैं, कोई हमें बददुआएं भी दे रहा है तब भी अगर हम तय कर लें कि हमने नहीं लेना, क्योंकि जैसे कोई बुरी चीज हमें दे रहा होता है स्थूल रूप में देखते हैं, वी हैव द पावर टू से नो वी डोंट वॉन्ट इट, सिमिलरली वी कैन ऑलवेज से दैट वी डोंट वॉन्ट इट, यू नो वी डोंट हैव टू से इट बट वी कैन टेल इट टू आवरसेल्फ, हम खुद अपने आप को कह सकते हैं कि हमें नहीं लेना है। और ये क्योंकि अभी तक शीलू बहन एक बात जो होती थी कि जब हम कहते थे कि दया करना या माफ करते जाना या दूसरे को, एक अपने अंदर एक त्याग लगता था कि हमने एक त्याग कर दिया कि चलिए हमने छोड़ दिया है, लेकिन अंदर से ये रहता था कि शायद मैं कमजोर हो गया हूं। बट यहां बाबा की इस बात से हमारे सामने ये बात आती है कि एक शक्ति है, आई हैव द पावर टू से नो आई डोंट वॉन्ट इट, दिस समथिंग इज आई थिंक आज अगर हम इसको अपने जीवन में अपनाएं तो तो एक बहुत बड़ा हमारी जीत हो सकती है और भाग्य प्राप्त करने का एक सहज तरीका हमें मिलता है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
मुरली की ये क्लासेस अगर हम कहें या मुरली के ये महावाक्य जिस तरह से हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए परमात्मा ने स्वयं कहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हर रोज एक सूत्र दे देते हैं, एक बात बता देते हैं, क्लैरिटी आती जाती है, जिंदगी की सारी सच्चाइयां सामने आती जाती हैं। और फिर जो मुश्किलें आ रही थी, जो हर्डल, जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी एक हर्डल रेस है, तो वो जो मुश्किलें आ रही थी वो धीरे धीरे निकलती जाती हैं, हमें वो युक्तियां मिलती जाती हैं उन हर्डल्स को पास करने की। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास है, आपका स्वागत है। आप ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में फैले सेंटर्स पर संपर्क कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब तलाश सकते हैं। नजदीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज की कड़ी में इतना ही, लेकिन आगे बहुत सी बातें और करनी है। बाबा की मुरली से जुड़ी बातें करेंगे, जीवन से जुड़ी बातें करेंगे। आपसे मुलाकात यूं ही होती रहेगी। अभी विदा लेते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। शांति।